भगवते वासुदेवाय ना। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये देखकर कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आए हैं। मैं राधा कुंज बिहारी मंदिर के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका श्रवण और कीर्तन में उत्साह बढ़ते रहे, भगवान की भक्ति में प्रगति होते रहे। वास्तविक प्रगति का मतलब है आध्यात्मिक प्रगति। जो भौतिक प्रगति है वो अशाश्वत है, वो कुछ समय के लिए ही है। आज दुनिया में लोग आपस में झगड़ते हैं थोड़े से धन के लिए, थोड़े से जायदाद के लिए, थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए, थोड़े से जमीन के लिए, जो मृत्यु के समय सब कुछ छीन लिया जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि सड़क पर दो कुत्ते झगड़ रहे हैं, वैसे हम देखते हैं इस दुनिया में सब लोग छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मेरा मानव जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर मैं मानव जीवन का उपयोग भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं करूँगा तो मुझे शायद ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जिसमें मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। पुनर्मुष्टि का भव। अगर व्यक्ति बहुत अभिमानी बन जाता है तो उसका पतन हो जाता है। तो मानव जीवन है नम्रता सीखने के लिए, भक्ति सीखने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान यानी कृष्ण तत्व का ज्ञान जानने के लिए। और वो ज्ञान तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति नम्र होता है। श्रील प्रभुपाद एक सुंदर कहानी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को गर्व नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक छोटा सा चूहा था। चूहे हमेशा छोटे ही होते हैं लेकिन ये छोटा सा चूहा था, और ये चूहा इधर उधर घूम रहा था और एक साधु तपस्या में लगे थे उसके पास में पहुँच रहा था। और साधु तो बाबा से सबसे प्रेम करते हैं, सर्वभूत हिते रहता। और थोड़े समय बाद वो साधु की शरण में आया और मदद मांगने लगा, क्योंकि उसको एक बिल्ली परेशान कर रही थी। अब किसी भी योनि में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी आश्रम में हो, कोई ना कोई परेशान करता ही है। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, क्योंकि ये दुखालय है। तो वो तंग आके साधु के पास बोले कि साधु जी मुझे मदद करो। बोले क्या हुआ? ये बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, तो मैं क्या करूँ? बोले आप मुझे बिल्ली बना दो। तो साधु ने उसको अपने कमंडल से जल लेके उसको वरदान दे दिया कि तुरंत बिल्ली बन गई। तो बिल्ली बनने के कारण वो बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न थी पता नहीं, और बहुत खुशी थे, इधर उधर घूम रहे थे। और सब चूहों जो चूहे उसको तकलीफ़ दे रहे थे, अब वो उसको तकलीफ़ दे रहे थे, मतलब बदला ले रहे थे, सॉरी दूसरे चूहों को तकलीफ़ दे रहे थे। और बिल्ली जो पहले बिल्ली थे अब उसको तकलीफ़ नहीं दे पा रहे थे। तो थोड़ी देर तक वो बहुत प्रसन्न था, और उसके बाद वो फिर से आए, साधु जी मदद करिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे ये कुत्ता है ये बहुत परेशान कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुत्ता बना दो। मटेरियल वर्ल्ड में प्रमोशन होता है ना कंपनीज में, ठीक है कुत्ता बना दी। तो उसको कुत्ता बना देते हैं, और कुत्ता होने के बाद वो भौंकने लगता है। आप सब जानते हैं कुत्तों का एक इलाका होता है अपना एरिया, उस एरिया में अगर आप जाओ तो भौ भौ भौ। मैं नकल नहीं कर सकता क्योंकि अपने पूर्व योनि भूल गया हूँ मैं। लेकिन कुत्ते का स्वभाव होता है वो भौंकता है। तो वो बहुत खुश था कि अभी मैं कुत्ता हो गया हूँ, अब सब बिल्ली मुझे डरते हैं और मैं अपने इलाके का मालिक हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आया साधु जी के पास, बोला साधु जी मदद करिए। क्या चाहिए? देखिए मैं शेर से परेशान हूँ, यहाँ पर एक शेर है वो मेरे को बहुत तकलीफ़ दे रहा है, आप मुझे शेर बना दीजिए। तो साधु जी वरदान देते हैं कि आप शेर बन जाओ। तो शेर बन जाता है, और शेर तो आप जानते हैं जंगल का राजा है, उसके कंपटीशन में कुछ नहीं है। बेस्ट। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति शेर बनना चाहते हैं, जैसे लायंस क्लब होते हैं हर एक व्यक्ति सोचता है मैं बेस्ट बनूं, मैं पढ़ाई में बेस्ट, एथलेटिक्स में बेस्ट, बिजनेस में बेस्ट, कुकिंग में बेस्ट, ड्यूटी वर्क में बेस्ट, प्रवचन में बेस्ट। दुनिया में, वर्ल्ड में टेंडेंसी है कॉम्पिटिशन। जब वो शेर बन जाता है तो साधु जी बैठे होते हैं और उनकी तरफ घूर के देखने लग जाते हैं, अपनी अपनी आवाज़ करते हैं शेर की। साधु जी बोलते हैं क्या हो रहा है, बोलते हैं भूख लगी है, तो बोला मुझे खाओगे तो साधु जी पानी लेके फेंकते हैं, पुनर्मुष्टिक भव उसका शाप देते हैं, फिर से चूहा बन जाते हैं। श्री प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए, कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर योग्यताएं आने लगती हैं, धीरे धीरे हमारे हमारे से लोग प्रभावित होने लगते हैं और हम जो कहते हैं वो बाकी लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और हम अपने अपने एरिया के शेर बन जाते हैं। लेकिन अगर इसके कारण अगर हमें अभिमान हो जाता है, अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो फिर हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हमेशा भक्त को जानना चाहिए मैं सिर्फ एक दास हूँ, वास्तव में कृष्ण ही एक स्वामी है, हम सब दास हैं, इवन गुरु भी दास है। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि सच्चे गुरु कौन है, सच्चे गुरु वो है जो सोचता है कि सब जो शिष्य हैं मेरे वो मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं और मैं उनका सेवक हूँ। ये भगवान कृष्ण ने मुझे इनकी सेवा का अवसर दिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रचारक कौन है, प्रचारक को ये सोचना चाहिए कि मैं सबका सेवक हूँ। जैसे यहाँ कार्यक्रम के प्रवचन के बाद यहाँ प्रसाद वितरण होता है, तो प्रसाद वितरण में कई भक्त बड़े उत्साह के साथ दूसरे भक्तों को प्रसाद देते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं सिर्फ सेवक हूँ, जो प्रसाद यहाँ भगवान का दिया है वो बांट रहा हूँ सबको। इसलिए प्रवचन दे रहा है वो भी सेवक है, कि वो सोच रहा है जो मैंने गुरुदेव से सुना है और आचार्य से सुना है वो मैं दोहरा रहा हूँ, इससे मेरा कोई श्रेय नहीं है। ये जीवन की सफलता है, अपने आप को दास मानना, सेवक मानना और उस सेवा के भावना में सच्चे दिल से कृष्ण के पवित्र नाम को पुकारना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत पवित्र दिन है, ये एकादशी का दिन है और आप में से अधिकांश इसका महात्म्य जानते होंगे। ये वो दिन है महीने में दो बार जब हम अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जब हम ऐसे क्रियाएं ज़्यादा करते हैं जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकें। हम भगवान की कथाओं को सुनने में ज़्यादा समय बिताते हैं आज के दिन और विशेष करके नाम जप में ज़्यादा समय बिताते हैं। इस्कॉन के कई भक्त आज के दिन 16 से ज़्यादा जप करते हैं, कई 20, कई 25, कई 64। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि क्या आपका ये आदेश है कि भक्तों को एकादशी के दिन 25 माला जप करना चाहिए, ज़्यादा जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले नहीं, मेरा आदेश है कि एकादशी के दिन पूरा दिन जप करना चाहिए तो इसलिए मैं प्रवचन यहीं पे अंत करता हूँ, जैसे हम सब मिलके गा सकें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। महान संत के बारे में जो इसके उदाहरण थे कि कैसे भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए, चैतन्य भागवत में बताया गया है कि खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए हर समय भगवान कृष्ण के नाम को याद करना चाहिए। अपनी चेतना को ऐसे बनाना चाहिए कि हम एक क्षण भी कृष्ण को भूले नहीं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती। क्या गारंटी है? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं कोल्हापुर में था उड़पी से लौटते समय, और वहाँ पर एक भक्त जो एक परिवार जो अभी भी भक्ति में आए थे कुछ 2 या 3 साल पहले, लेकिन गंभीरतापूर्वक भगवान का नाम ले रहे थे, और उनके परिवार के एक सदस्य, एक माता जो वृद्ध थे करीब 60-62 वर्ष के, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था और उनको ICU में रखा गया था अस्पताल में, और भक्तगण उनसे मिलने जाते। थोड़े दिनों बाद उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, जब उनको होश आया बहुत दिनों वो होश में नहीं थे, होश आया तो शिला प्रभुपाद एक चित्र देखकर बता रहे थे कि ये व्यक्ति मुझे बार बार बुला रहे थे, ये व्यक्ति मुझे बार बार बुला रहे थे, प्रभुपाद जी की फोटो देखकर। और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया, वो जप करते थे कुछ माला, इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो 16 माला नियम पूर्वक करेंगे। उन्होंने कुछ दो एक दो महीने पहले कंठी माला स्वीकार की और नियमित पूर्वक 16 माला करने लगे कम से कम। और क्योंकि वो काफ़ी उनका समय मिलता था, पूरा दिन ही भगवान का नाम लेते रहते। फिर पिछले महीने उनका स्वास्थ्य फिर से खराब था, और जब पंढरपुर में एक कार्यक्रम था उस समय उनके स्वास्थ्य बहुत ही खराब था और कई भक्त प्रार्थना कर रहे थे। पिछले गुरुवार को आज से करीब 10 दिन पहले एक डेढ़ दिन के लिए बेहोश थे, मतलब किसी को किसी से बात नहीं कर रहे थे। और फिर करीब रात के 9 बजे वो भक्तों को उन्होंने बुलाया और वो बोलने लगी, वो कहने लगे कि अब मैं जा रही हूँ। तो भक्तों ने उनसे बताया कि आप चिंता मत करिए, भगवान आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। बोले नहीं मैं जा रही हूँ। भक्त ने बताया आपको वृंदावन जाना है, कार्तिक में वृंदावन आपको जाना चाहिए, इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो बोले नहीं मैं गोलोक वृंदावन जा रही हूँ। और उसके सामने एक भगवान का फोटो था, राधा गोपीनाथ का, वो देखकर बता रही थी भगवंत आले ले मला निर्णयासाठी, मेरे को ले जाने के लिए भगवान आए हैं, अब मैं जा रही हूँ, आप कोई भी रोना मत, कोई रोना मत, और मेरे रिश्तेदारों को मत बुलाना, खाली भक्तों को बुलाना, बस भक्तों को बुलाना और कीर्तन करना बस। ऐसे बोल के करीब 10-15 मिनट में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उनके परिवार के लोग भक्ति में थे, लेकिन ये घटना को देखकर उनका उत्साह इतना बढ़ गया। रात के 12 बजे जब उनके स्मशान घाट से सब उनके परिवार के लोग लौट के आए तो कोई रो नहीं रहा था, और सब बोल रहे थे कि इनका मृत्यु का अनुभव देखकर, इनका भगवान के नाम में श्रद्धा देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ गया है, हमें भी मृत्यु का कोई डर नहीं है। क्योंकि वास्तव में भक्त के लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु भक्त के लिए सिर्फ एक सेवा का स्थान परिवर्तन है। अब मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, और मृत्यु के बाद जहाँ भगवान चाहेंगे वहाँ पर मैं सेवा करूँगा, चाहे भगवान मुझे गोलोक वृंदावन ले जाएं, चाहे भगवान मुझे भौतिक जगत में रखें। मुझे भगवान से यही प्रार्थना है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जन्म भी मोए इच्छा यदि तोरा भक्त ग्रोहे, मेरे को भक्त के घर में जन्म दो, कीट जन्म हो यथा तुवा दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नाही को आश, मेरे को कीड़े का भी जन्म दो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त के घर में हो। अब ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए अगर वो भक्त के घर में नहीं है तो भक्त के लिए हर स्थिति अच्छी है, भक्त के लिए कोई डर है ही नहीं। जिस भी स्थिति में है वो भगवान को याद कर सकता है। श्रील प्रभुपाद एक बार कुछ भक्त जेल में थे किसी कारणवश, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उनकी एक ही गलती थी कि वो जोर से कीर्तन कर रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये मान रही थी कि दिस इज अ न्यूसेंस, ये एक बकवास चीज़ है, और भक्तों को जेल में डाल दिया। सब भक्त आकर प्रभुपाद जी से बोले, प्रभुपाद हम क्या करें, हमारे कुछ भक्त जेल में हैं और हमारे पास कोर्ट में जाने के लिए, वकील के लिए, लॉयर के लिए पैसे नहीं हैं, कैसे उनको बाहर निकालें। श्रील प्रभुपाद जी बोले, बाहर आने की क्या जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी बोले, आप जेल में रहिए और जेल में कीर्तन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद शास्त्र के उदाहरण थे, नारायण परा सर्वे न कूतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, जो स्वर्ग में हो या नरक में हो या जेल में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उनकी चेतना हमेशा कृष्ण नाम में थी। कृष्ण नाम हमारा असली धन है, बाइबल में कहा गया कि ये वो धन है इसको चोर नहीं चुरा सकते, और मृत्यु के समय भी ये धन आपके साथ जाते हैं, बाकी सब धन नहीं जाते, आपके ATM कार्ड्स भी वहाँ नहीं चलते और नहीं और कोई चेक बुक्स या पासबुक्स, सिर्फ कृष्ण नाम धन, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम हमारा लाइफ है, जीवन है। जितना आप कृष्ण नाम लोगे उतना भौतिक बंधन से मुक्त होगे, और उतना ही जल्दी आपको शुद्धता प्राप्त होगी, उतना ही आप दूसरों को शुद्ध बना सकते। आज मैं ऐसे ही संत के बारे में बोल रहा हूँ जो कृष्ण नाम लेने में सबसे आदर्श उदाहरण है, और वो है नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का नाम सुनते ही, उनका नाम लेते ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। वो एक आदर्श उदाहरण है जो दिखाते हैं कि व्यक्ति का जन्म, उसकी जाति, उसका कुल, उसका परिवार ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति की चेतना क्या है वो महत्वपूर्ण है। भारत में अक्सर लोग कई होते हैं जो अपने आप को स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, ये देखो मेरा धागा जनेऊ दो पैसे का, और हालांकि मैं मछली खाता हूँ लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ। ये किस प्रकार का ब्राह्मण? जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो उसके पास डॉक्टर जो मेडिकल साइंस का MBBS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको उस ज्ञान में अभ्यास होना चाहिए। अगर व्यक्ति ने कोई अभ्यास नहीं किया है और वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसके पास कौन जाएगा? राम नाम सत्य है। जो भी पेशेंट जाएगा वो जल्दी ऊपर। तो इसलिए हर एक चीज़ को क्वालिटी से देखा जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम नहीं देखते मुसलमान डॉक्टर है या क्रिश्चियन डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर है, हम देखते हैं कि ये डॉक्टर है, अगर वो क्वालिफाइड है, योग्य है, उसको उस ज्ञान की जानकारी है और वो पेशेंट्स को ठीक कर सकता है तो हम उसे दवाई ले सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण, वैष्णव, साधु, ये सब गुणों से जाना जाता है, जाति से नहीं, कुल से नहीं, धन से नहीं, विद्या से भी नहीं। कई होते हैं जो सारे वेदों को जानते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की शरणागति में आना है। वास्तव में विद्वान कौन है? विद्वान वो है जो जानता है कि कृष्ण भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ, और आप सब ये बात को जानते हैं इसलिए आप सबसे बड़े विद्वान हैं। जो भी कृष्ण भक्ति में आया है वो सबसे बड़ा विद्वान है। कृष्ण जयी भजे से ही बड़ा चतुर, ये चतुरता है। और कृष्ण भजन दूसरों को देना, कृष्ण नाम दूसरों को देना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। आज से करीब 2 हफ्ते पहले श्रील हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस था, तो मैं आज हरिदास ठाकुर के जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए और आप सबके शुद्धिकरण प्रसन्नता के लिए। आप सब भी मुझे आशीर्वाद दो जोर से हरी हरी बोलकर। हरी हरी। हरिदास ठाकुर को भगवान हरि का नाम इतना प्रिय था कि वो दिन रात भगवान का नाम लेते थे। 3 लाख, इसका मतलब करीब 192 माला एक दिन में। इतना उनका उत्साह था, वो हर क्षण भगवान को याद करते, और जब वो भगवान का नाम लेते तो उनके आंखों में आंसू आने लगते और प्रेम के लक्षण प्रकट होते। हरिदास ठाकुर का पूरा जन्म है ब्रह्मा जी का। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विमोहन लीला, ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को चुरा लेते हैं। ये द्वापर युग के अंत के समय की बात है जब श्याम सुंदर नंदनंदन कृष्ण इस धरती पर लीला कर रहे थे। जब कृष्ण देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को चुरा लिया है तो वो अपने योग माया से अपने आप को विस्तारित करते हैं, उसी तरीके के बछड़े और ग्वाल बाल फिर से निर्माण हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो जाता है, ब्रह्मा जी जान लेते हैं कि मैं जिसको साधारण बालक समझ रहा था वो कृष्ण स्वयं भगवान है, और भगवान के चरणों में गिर के माफी मांगते हैं और कृष्ण उनके अपराध को माफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी पश्चाताप की भावना से नवद्वीप जाते हैं, वहां पर कई वर्ष तपस्या करते हैं और तपस्या के बाद उनको साक्षात भगवान का गौर सुंदर का रूप दिखाई पड़ता है। लंबी भुजाएं, पीत वर्ण, कमल जैसी आंखें, अरे देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी से, आपको क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा है कि मेरा अगला जन्म ऐसा हो कि जिसमें मुझे कोई भी सृष्टि के कारोबार मैनेजमेंट नहीं करना हो। मुझे ऐसा जन्म चाहिए जिसमें मैं सिर्फ आपका नाम और आपकी कथा श्रवण और कीर्तन करता रहूं। मुझे ऐसा जन्म चाहिए जिसमें मुझे जो अभिमान हो गया है कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, उस अभिमान से मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान प्रसन्नता से कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी होगी, आपका अगला जन्म एक यवन परिवार में, मुसलमान परिवार में होगा, और आपका नाम हरिदास ठाकुर होगा, और आप दिन रात मेरे पवित्र नामों का कीर्तन करोगे। मैं भी उस समय प्रकट होऊंगा और आप मेरी लीला में सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं। आज से करीब 550 साल पहले हरिदास ठाकुर इस धरती पर बुढ़ान डिस्ट्रिक्ट में प्रकट होते हैं, जो कि बांग्लादेश में है, आज पूर्व बंगाल में। हालांकि उनका जन्म मुसलमान परिवार में होता है, शुरू से ही वह स्वाभाविक रूप से कृष्ण नाम ले रहे होते हैं। वो कृष्ण नाम लेते हैं और दूसरों को कृष्ण नाम देते हैं। गंगा के किनारे वो भ्रमण कर रहे होते हैं। मैं उनकी लीला को, कुछ प्रमुख भाग को श्री चैतन्य भागवत से चर्चा करना चाहूँगा अपने शुद्धिकरण के लिए। हरिदास ठाकुर जब इस तरह से नाम प्रचार कर रहे होते हैं तो कुछ लोग जो हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि आप चाहे भक्त हों या अभक्त हों, इस दुनिया में ईर्ष्या हमेशा हो जाती है। हरिदास ठाकुर को बहुत मान सम्मान मिल रहा था, ख्याति मिल रही थी, और उसके कारण कुछ लोग उनसे विरोध करने लगे। उसमें से कुछ हिंदू और मुसलमान जाकर काजी से शिकायत करने लगे कि ये हरिदास, ये देखिए, ये हिंदुओं के धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और अगर इसको आपने रोका नहीं तो शीघ्र ही सारा ये जो बंगाल प्रदेश है ये सब हिंदू हो जाएंगे, ये सब कृष्ण नाम लेंगे। जब नवाब ने यह सुना तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को आदेश, हरिदास ठाकुर को जो है पकड़ने का, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हरिदास ठाकुर मानते हुए निर्भयता से कैद खाने की ओर जा रहे थे। जब हरिदास ठाकुर कैद खाने की ओर जा रहे थे, जो कैदी थे, जो जेल में थे, वो सब बहुत प्रसन्न हो गए कि आज हमें परम संत हरिदास ठाकुर के दर्शन होंगे। उस जमाने में जेल के अंदर ज़्यादा अच्छे लोग थे बाहर की अपेक्षा, क्योंकि वो बहुत क्रूर लोगों का राज्य था, और सारे कैदी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक हरिदास ठाकुर को प्रणाम करने के लिए खड़े हुए थे। हरिदास ठाकुर जब वहाँ से गुजरे, उनको देखकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इसी स्थिति में रहो। जब कैदियों ने सुना तो वो काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि वो जेल में हैं, दुखी स्थिति में हैं, और एक साधु आशीर्वाद दे रहे हैं आप ऐसी स्थिति में रहो। मान लो आप बीमार हैं, आपको 103 टेम्परेचर हो गया, मलेरिया हो गया, और कोई भक्त मिलने आता है और कहता है आप ऐसी स्थिति में रहो, तो बहुत दुख लगेगा, सब लोग, सबका चेहरा निराश हो गया। और हरिदास ठाकुर मुस्कुरा कर कहने लगे, आप मेरे कहने का वचन नहीं समझ पाए। मैंने जब कहा कि आप इसी स्थिति में रहो, इसका अर्थ यह है इस समय तुम जेल में होने के कारण निरंतर कृष्ण नाम ले रहे हो, हर समय कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो। आप भी बोलिए कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जोर से बोलिए हरि हरि, हरि हरि। जब हरि नाम जोर से लिया जाता है तो सब जीवात्माओं का उद्धार हो जाता है। तो जब भी आप नाम जप करते हो तो जोर से करिए, और साथ साथ प्रार्थना करिए कि हे भगवान, हे राधा कुंज बिहारी भगवान, हे कृष्ण, हे राधा रानी, जितने भी जीव हैं सबका उद्धार हो जाए। स्वार्थी मत बनो, निस्वार्थ बनो, हरिदास ठाकुर का एक गुण था। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आप कृष्ण का नाम ले रहे हो, इस स्थिति में हो, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे डर यह है कि अगर आप कैद खाने से मुक्त हो गए तो आप घर में जाकर कृष्ण का नाम लेना भूल जाओगे। मैं जब कह रहा हूं आप इसी स्थिति में रहो, उसका तात्पर्य यह है कि आप कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहो। चिंता मत करो, 2 या 3 दिन में आप इस कैद खाने से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब आप कैद खाने से मुक्त भी हो जाओ तो आप निरंतर गाते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर इस तरह से कैदियों से मिलकर फिर आगे जाते हैं उस नवाब से मिलने के लिए। वो नवाब
हरिदास ठाकुर को देखकर वो कहने लगता है, हरिदास क्या कारण है तुमको भगवान की दया से इतना अच्छा जन्म मिला है? वो सोच रहे थे मुसलमान का जन्म बहुत अच्छा जन्म है और आप ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो, मैं तो इतना घृणित मानता हूँ, अगर कोई चावल जो है अगर हिंदुओं ने इसके ऊपर दृष्टि भी डाली है मैं वो खाता नहीं हूँ, और तुम इन हिंदुओं का नाम ले रहे हो, तुम्हारी क्यों तुम अपने अपने धर्म को छोड़कर इन दूसरों के धर्म को क्यों स्वीकार कर रहे हो? हरिदास ठाकुर ये सुनकर हंसने लगते हैं, बोलते हैं आहा ये देखो भगवान विष्णु की माया का प्रभाव देखो, वो एक ही भगवान है जो सब प्राणियों के हृदय में वास करते हैं, जिसको मुसलमान अल्लाह कहकर पुकारते हैं और जिसको हिंदू कृष्ण पुकारते हैं। आप ये जान लो कि पुराण और कुरान दोनों एक ही तत्व का वर्णन करते हैं, वो एक ही भगवान हैं, वो अखंड हैं, वो अनंत हैं, वो सर्वव्यापी हैं। हर एक व्यक्ति का मन भगवान के अलग अलग नाम के प्रति आकर्षित होता है और मेरा मन कृष्ण नाम के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसलिए मैं कृष्ण नाम ले रहा हूं। आप चाहे मुझे जो सजा देना चाहें आप सजा दे सकते हैं। यह सुनकर वो नवाब उनसे कहने लगता है कि अरे भाई मैं तुमको एक और अवसर देता हूं, आपको भगवान का नाम प्रचार करना है ठीक है, आप कुरान से करो, आप कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो, नहीं तो मैं आदेश देता हूं कि तुमको 22 मार्केटों में ले जाकर पीटा जाएगा, तुम्हारे प्राण जाने तक तुमको सजा दी जाएगी। हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर कहने लगे, जे करे न ईश्वर ताहा भई आर के हो करीते न पारे। जे करे न ईश्वर, जो ईश्वर करते हैं वही होना है, जो भगवान की इच्छा है वही होना है। अगर भगवान की ये इच्छा है कि मेरे को 22 मार्केट में पीटा जाए तो मुझे मंजूर है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रकट कर रहे हैं। आज सवेरे भागवतम क्लास में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में यही बात बताई गई थी कि व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, इसमें कोई और व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। मुझे ऐसे लगेगा कि ये व्यक्ति के कारण मुझे सुख मिल रहा है, ये रसगुल्ला दे रहा है मुझे, या ये व्यक्ति के कारण मुझे डांट पड़ रही है, अन्याय हो रहा है, लेकिन न तो रसगुल्ला देने वाला स्वतंत्र है न मारने वाला स्वतंत्र है, वो कृष्ण ही है सब कुछ कर रहे हैं, सर्व कारण कारण। और कृष्ण क्यों कर रहे हैं प्रकृति के द्वारा? अपने अपने कर्मों के अनुसार, आप बदल नहीं सकते इसको, इतना भी नहीं बदल सकते अपने प्रयास से, कृष्ण की कृपा से बदल सकते हैं, अपने प्रयास से नहीं। जब आप जन्म लेते हैं तभी निर्धारित होता है कि कितने श्वास हैं, कितने दिन हैं आपके पास, कहाँ आपको रहना है, क्या खाना है, कितने रसगुल्ले हैं, कितने सजा है, और यहाँ तक कि आपको कहाँ मृत्यु होनी है वो भी निश्चित है। तो इसलिए भक्त जो है वो जानते हैं कि मैं कितना भी प्रयास करूँ सुख और दुख ये तो भगवान कृष्ण के हाथ में है, मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मैं कृष्ण की शरण ले सकता हूँ। कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण बुला रहे हैं हमको, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ, अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ, नहीं तो इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक, छोटा सा कीड़ा होता है इंद्र गोप, और इंद्र इतने बड़े स्वर्ग के राजा हैं, सब कर्मों के अधीन है, सब सुख और दुख से प्रभावित है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो व्यक्ति कृष्ण नाम लेता है उसके सारे बंधन कट जाते हैं, सब बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण नाम ही एकमात्र आश्रय। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, क्या आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, क्या आप हाथ देखते हैं, जैसे कई साधु होते हैं हाथ देखते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले ये हाथ की जो रेखाएं हैं जो लाइंस हैं, जब आप ताली बजाते हो और साथ में कृष्ण का नाम लेते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आप चेक करोगे तो लाइन बदल गए होंगे।
श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त के सारे कर्म बदल जाते हैं यस कीर्तन से, और ये इतना आसान तरीका है इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझ पाते। अगर कोई व्यक्ति बताता है ये आप ताबीज डालो, आप इतना डोनेशन दो, इधर एक ये कराओ तो तुम्हारे कर्म बदलें, तो हम देना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान है इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझते। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हालांकि सबसे सरल है, ये सबसे शक्तिशाली तरीका है। जो फल आपको हिमालय में जाकर तपस्या करने से नहीं मिलेगा, जो फल आपको संस्कृत के बड़े पंडित बनने से नहीं मिलेगा, जो फल आपको व्रत रखने से नहीं मिलेगा, वो फल आपको एक बार सच्चे दिल से हरि नाम लेने से मिलता। एक बार कृष्ण नाम लेने से जितने पाप दूर होते हैं उतने पाप आप कर ही नहीं सकते। ये भगवान के नाम की महत्वता है। इसलिए एक आज के दिन एक व्रत रखो कि मैं हर समय कृष्ण का नाम लूं। भक्ति विनोद ठाकुर के एक शिक्षा गुरु थे, वो ऐसा कहते थे, कृष्ण नाम न भूली बे, कृष्ण नाम कभी मत भूलिए, कीर्तनीय सदा हरि। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से बताने लगे, खंड खंड है देह यदि जाए प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। बोलते हैं खंड खंड है यदि देह आमार, मेरा शरीर अगर आप बोल रहे पीटने से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कोई बात नहीं, और मेरे प्राण चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कष्ट आने पर, विपत्ति आने पर भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं छोड़नी बल्कि श्रद्धा को बढ़ाना है। विपत्ति भगवान की कृपा होती है जो हमें शुद्ध बनाती है, और उस विपत्ति में अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं नाम के रूप में तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो काजी ये सुनकर बहुत गुस्से होते हैं, अपने जल्लादों को बुलाकर बोलते हैं, ले जाओ इसको, इसको 22 मार्केटों में पीटा जाए। और चार बहुत ही कठोर, बहुत तगड़े शरीर वाले व्यक्ति उनको बेड़ियों से बांधे हुए मार्केट में ले जाकर खींचने लगते हैं, उनके शरीर को जमीन पे घसीटा जाता है, उन पर थूका जाता है, उनके ऊपर गालियां बकी जाते हैं और लोहे के जंजीरों से उनको पीट रहे होते हैं। आसपास के लोग जो धार्मिक होते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, वो हाथ जोड़कर बोलते हैं जल्लादों को, क्यों मार रहे हो आप हमें मारो, इनको क्यों मार रहे हो, निर्दोष है, इतने बड़े संत को आप मारोगे इस गांव का कर्म नष्ट हो जाएगा, इस गांव में अकाल पड़ जाएगा। जहां पर एक साधु की निंदा की जाती है या अपमान किया जाता है वहां पर बहुत दुर्भाग्य होता है, आप इसको छोड़ दो। लेकिन वो जल्लाद उसको पीट रहे थे, और जैसे वो पीट रहे थे उनके मुख से एक ही आवाज निकल रही थी, हरी हरी, जोर जोर से गा रहे थे, आपको तो पीटा नहीं जा रहा, जोर से बोली हरी 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 हरी, जोर जोर से हरी का नाम ले रहे थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, क्योंकि जब भी भक्त को कोई खतरा आता है तो भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं, भगवान वैकुंठ से अपना चक्र भेजते हैं, सुदर्शन चक्र, भक्त की रक्षा के लिए, जल्लादों को मारने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर जब चक्र को आते हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं रुक जाओ, चक्र को रोक देते हैं। मान लो आपको कोई मार रहा है और पुलिस आती है बचाने के लिए तो आप क्या बोलोगे, पकड़ो पकड़ो ये लेकिन हरिदास ठाकुर वो चक्र को रोकते हैं, बोलते नहीं, मैं अपने कष्ट को सहन कर सकता हूँ लेकिन दूसरे के कष्ट को नहीं सहन कर सकता, आप चले जाओ, चक्र को वापस भेज देते। भगवान का भेजा हुआ अस्त्र वो आगे नहीं बढ़ सकता, भक्त का भक्त की दया और भगवान के क्रोध से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। हरिदास ठाकुर सहन कर रहे होते, ये है गुण सहनशीलता जो हमारे अंदर आता है तब हम भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं, तब हम वैष्णव कहे जा सकते हैं। नरसिंह मेहता का भी एक भजन ऐसा, वैष्णव ते जानी रे जे पीर पराई जानी रे, जो पर दुख दुखी है वो वैष्णव है, पर दुख दुखी, कई बार हम लोग पर सुख दुखी हो जाते हैं ना, उसको रसगुल्ला मुला मुझे नहीं मिला, उसको ज़्यादा सुविधा मिल गई, उसको फैसिलिटी मिल गई भक्ति में भी, लेकिन पर दुख दुखी ये वैष्णव है। प्रभुपाद जब दुख देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे और बहुत बड़ा उत्सव हुआ, सबने अच्छे अच्छे प्रसाद लेकर सब लोग विश्राम कर रहे थे। अब प्रभुपाद देखते हैं कि प्रसाद के बाद सबने जब पत्तल फेंके हैं, प्रभुपाद देख रहे हैं कि खिड़की से किस पत्तल में बचे हुए प्रसाद के लिए कुछ गरीब आपस में झगड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा भोजन और सबको भूख लगी है। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आए और प्रभुपाद ने तुरंत अपने GBC बड़े लीडर्स को बुलाया और बोले, ये मैं नहीं देख सकता, मेरे मंदिर के इस मंदिर के 10 माइल के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, आज से फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू करो, प्रसाद बांट। ये है वैष्णव, जो दूसरों को मदद करने के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हो। वासुदेव दत्त ऐसे वैष्णव थे। वासुदेव दत्त जब प्रहलाद के अवतार थे, जब भगवान गौरंग ने पूछा, वासुदेव तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो वासुदेव बोले, भगवान मुझे ये वरदान दो कि जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, पापी हों, अच्छे हों, पुरुष मानव शरीर में हो, पशु हों, सब भगवान के धाम चले जाएं, सब भगवान के धाम चले जाएं। और अगर आपको लगता है ये बहुत पापी हैं तो आप सारा पाप मुझे दे दो, मैं उनके पाप के लिए हमेशा के लिए नरक में जाने को तैयार। ये है सच्चे वैष्णव। हमारा इतना सौभाग्य है कि हम ऐसी परंपरा में हैं, श्रील प्रभुपाद की परंपरा, जिसमें ऐसे बड़े बड़े आचार्य हैं जो आदर्श दिखाते हैं कि कैसे हमें दूसरों के लिए कष्ट सहन करना चाहिए। भक्ति का मतलब है नम्रता, सहनशीलता, और दूसरों को मान देना और स्वयं मान की इच्छा नहीं रखना। जब भगवान ने देखा कि हरिदास ठाकुर चक्र को रोक रहे हैं, तो भगवान गौरंग ने अपने शरीर से हरिदास ठाकुर के शरीर को ढक दिया, जिससे सारी जो जल्लादों की मार थी स्वयं भगवान ने अपने शरीर में स्वीकार कर ली। और कई वर्षों बाद भगवान ने हरिदास को देखा, हरिदास तुमको याद है, तुमको याद है जब तुमको 22 मार्केट में पीट रहे थे, मैंने अपने शरीर से तुम्हारे शरीर को ढक दिया, और ये देखो ये निशान दिखा है। जो इतना सहनशील होता है उसको भगवान की विशेष कृपा मिलती है, भगवान उसके लिए अपने अपने शरीर पे कष्ट सहन करते। ये गुण है वैष्णव का। तो इस तरह हरिदास ठाकुर को पीट रहे होते हैं एक मार्केट में, दो मार्केट में, तीन मार्केट में, लेकिन हरिदास ठाकुर मुस्कुरा रहे होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, उनके मन में लेश मात्र भी चिंता या डर या भय या दुख नहीं होता। और कुछ समय बाद वो जल्लाद निराश हो जाते हैं, उनका मुंह बिल्कुल फीका पड़ जाता है। हरिदास उनको देखकर बोलते हैं, क्या हुआ, ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी मार पड़ रही हो। तो जल्लाद बोलते हैं कि हाँ, अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि ये नवाब सोचेगा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। हरिदास ठाकुर के आंखों में आंसू आने लगे, वो कहने लगे, अगर मेरे जीवित रहने से आपको कष्ट हो रहा है तो मैं अभी प्राण त्याग देता हूँ। ऐसे कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद करके समाधि ग्रहण कर ली, प्राण नहीं त्यागे, लेकिन लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, श्वास बंद कर दी थोड़े समय के लिए। और ये जल्लाद उठाकर उसके शरीर को काजी के सामने फेंक दिया, और नवाब सब हंसने लगे, ये देखो हरिदास, हा, ये अपने आप को बड़ा संत समझते थे, देखो ये क्या इनकी गति है, अगर भगवान के भक्त थे तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की इनकी। तब ने निश्चय किया कि इसके शरीर को हम दफनाएंगे नहीं, क्योंकि मुसलमानों के शरीर को दफनाया जाता है तो उनको स्वर्ग मिल जाता है, हम नहीं चाहते कि इनको स्वर्ग मिले, इन्होंने बहुत पाप किए, हरि नाम बहुत लिया, इसलिए इनके शरीर को गंगा जी में बहा देते हैं। और हरिदास ठाकुर गंगा में बहाने के बाद थोड़े समय बाद होश में आ जाते हैं, तैरते हुए बाहर आ जाते हैं और फिर गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर हमें सिखाते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक, जो चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, अशेष दुर्गति है यदि प्राण जाए तथापि वदने ना छाड़ी बे हरि नाम। अशेष दुर्गति है, बहुत दुर्गति हो शरीर की मन की, क्योंकि आप देखेंगे प्रकृति के नियम से शरीर और मन पे तकलीफें आएंगी, क्योंकि प्रकृति भौतिक प्रकृति है, त्रिविध ताप आएंगे, लेकिन अशेष दुर्गति है, बहुत दुर्गति हो यदि प्राण भी जाए तथापि वदने न छाड़ी वे हरि नाम, तो भी शरीर से हरि नाम नहीं त्यागना, ये हरिदास ठाकुर का विशेष गुण था।
हरिदास ठाकुर जब होश में आ गए तो नवाब और वो काजी दोनों क्षमा मांगने के लिए आए। वो नवाब उनके चरणों में गिर के कहने लगा, सत्य सत्य जानीला तुम्ही महापीर। मैंने आज जान लिया, मुसलमानों में पीर बोलते हैं जो हिंदुओं में संत बोलते हैं, पीर आप महापीर हो। जो मैं खाली पुस्तकों में पढ़ता था आज देख लिया तुम महापीर हो। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, तुम मेरे अपराध को माफ कर दो। हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा कोई अपराध है ही नहीं, ये तो मैंने कुछ भगवान के नाम की निंदा सुनी थी, भगवान ने मुझे सजा दी है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। और मुस्कुराते हुए गंगा के किनारे कीर्तन करते हुए निकल पड़े। ये गुण है फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता, ये धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए अपने जीवन में अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो। जीसस क्राइस्ट जो ईसाई धर्म का जिन्होंने प्रचार किया, धर्म तो एक ही है भगवान से प्रेम करना, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग देश में अलग अलग समय अलग अलग रूप से उसी तत्व का निरूपण किया है। जीसस क्राइस्ट भी भक्ति का ही प्रचार कर रहे थे उस समय के अनुसार, लव गॉड विद ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल, भगवान से प्रेम करो। लेकिन उस समय के जो अनुयायी कुछ उस समय जो कुछ प्रीस्ट थे उनको विरोध लगा, उनको लगा कि ये हमारे लिए बाधा है, और उन्होंने उनको आप जानते हैं गिरफ्तार करके उनको फांसी पे चढ़ा दिया। हरिदास जीसस क्राइस्ट जब फांसी पे चढ़ा रहे थे तो उन्होंने भगवान से यही आखिरी प्रार्थना की, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट, इनको माफ़ कर दो, ये जानते नहीं हैं, ये अज्ञान के कारण मुझे सजा दे रहे हैं। और उन्होंने क्षमा उनके लिए क्षमा माफ प्रार्थना की। ऐसे हरिदास ठाकुर यहाँ पर प्रार्थना कर, अभी हमारे में से कोई उस लेवल पे है नहीं कि हम फांसी पे जाएं, और हमारे लिए इतनी बड़ी परीक्षा आएगी नहीं, लेकिन छोटी छोटी जो परीक्षा आती है अपने साथ के भक्तों के बीच में, उसको हम अगर हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं तो हम भगवान के धाम जाने के काबिल बन सकते हैं। भगवान के धाम वही जा सकता है जो व्यक्ति तकलीफ आने पर, दुख आने पर, इन बेइज्जती होने पर, पराजय होने पर हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे कृष्ण धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ भेजी मेरे शुद्धिकरण के लिए। ऐसे व्यक्ति समुक्ति पदे दाए भाग, वो भगवान के धाम जाने के काबिल हैं। हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए आगे निकल पड़े और हरि नाम कीर्तन करने लगे। वे गुफा में रहकर जप करते, आप में से जो लोग नवद्वीप मायापुर गए हैं आप जानते होंगे फुलिया के पास एक गुफा है, वहाँ पर हरिदास ठाकुर जप करते और कुछ लोग उनका प्रवचन सुनने आते। और एक दिन उनको बहुत अजीब कुछ बदबू महसूस हो रही थी, गंदी महक आ रही थी, और उन्होंने एक वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को, और आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता लगाया तो कहने लगा कि इसके नीचे एक बड़ा भयंकर सांप रहता है, इसलिए आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, हरिदास ठाकुर के लिए मानवों का सत्संग या सांपों को ज्ञान देना, वो सोच रहे थे सांप है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं, लेकिन अगर आपको रहने में कष्ट हो रहा है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो अगर कल तक अगर ये सांप अपने आप नहीं चला जाता तो मैं इस गुफा को छोड़ दूंगा। अभी हरिदास ठाकुर की इतनी निर्भयता थी, अगर आपको पता चले कि यही हॉल के बीच में छोटा सांप है तो कितने लोग रहेंगे यहाँ पर, सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा। हमारे बेलगाम में एक कार्यक्रम में एक भक्त ने ऐसे एक कीर्तन चल रहा था और मृदंग करताल से, और एक भक्त ने मजाक में वो प्लास्टिक के सांप होते प्लास्टिक का वो फेंक दिया बीच में, सब भाग गए, मृदंग वहीं करताल वहीं। क्योंकि हमको भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, पूरा फेथ नहीं है, थोड़ा फेथ है। लेकिन हरिदास ठाकुर सोच रहे थे अगर सांप भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, जैसे उन्होंने बोला अगर सांप अपने आप नहीं चला जाता तो सांप बाहर आ गया। सबके हृदय में भगवान है, परमात्मा है, और परमात्मा ने उस सांप को प्रेरित किया और वो सांप वहाँ से निकल पड़ा। हरिदास ठाकुर एक थोड़ी दूर गए और वहाँ पर एक व्यक्ति जो है कृष्ण नाम कीर्तन कर रहा था, कि कृष्ण की लीला का, कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ये लीला का गान कर रहा था, एक गारूड़ी जिसको बोलते हैं जो सर्पों को पास नाच करते। जब वो गा रहे थे तो हरिदास ठाकुर को कृष्ण का आवेश आ गया और कृष्ण के आवेश से वो नाचने लगे, वो रोने लगे और वो जमीन में लौटने लगे, और सब लोग वो जो गारूड़ी था वो स्वयं हाथ जोड़कर खड़े होकर देखने लगा बड़े आदर के साथ,
सब लोग प्रणाम कर रहे थे, महान संत नृत्य कर रहे हैं कृष्ण नाम के। लेकिन थोड़ी देर बाद हरिदास ठाकुर अपने बाह्य चेतना में आए और वहां से उठकर वो चले गए। उधर एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण सोचने लगा, ये नकली था, वो सोच रहा था अगर मैं भी ऐसे करूँगा तो मुझे भी थोड़ा आदर मिलेगा, तो इस तरह से वो भी नाचने लगा। और जैसे ही वो नाचने लगा, वही गारूड़ी जो हरिदास ठाकुर को बड़ा आदर दे रहा था, वो लकड़ी लेके उसको पीटने लगा। और बेचारा बोला, बाप बाप मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और तुरंत वो भाग गया। लेकिन बाकी सब लोग उसे पूछने लगे कि आप भेद क्यों कर रहे हो, एक व्यक्ति नाच रहा है, गा रहा है, वो भी कृष्ण के लिए नाच रहा है और आप उसको आदर दे रहे हो, और ये भी कृष्ण के लिए नाच रहा है और आप उसको लकड़ी से पीट रहे हो। तो ये सुनकर उसने जवाब दिया कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तुमको मैं फ़र्क बताता हूँ। ये जब पहला व्यक्ति जो नाच रहे थे वो हरिदास ठाकुर, वो बहुत बड़े भक्त हैं। हरिदास ठाकुर जब जब नृत्य करते हैं तो साक्षात कृष्ण पवित्र, कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। हरिदास ठाकुर जहाँ पर रहते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। हरिदास ठाकुर का नाम लेते ही पूरा विश्व पवित्र हो जाता है। सब लोग बोलिए जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। ब्रह्मा जी, शिव जी और गंगा माता स्वयं इच्छा करते हैं हरिदास ठाकुर के पवित्र संग को प्राप्त करने के लिए। हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं कि उनके संग से सब लोग पवित्र हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद दैत्य परिवार से होकर भी महान भक्त हैं, जैसे हनुमान एक वानर परिवार से होकर भी महान भक्त हैं, ऐसे हरिदास एक यवन परिवार में होकर भी सबको शुद्ध बनाने वाले हैं। सौ सौ मुख से भी, सौ सौ साल तक भी मैं हरिदास ठाकुर की महिमा का गान करूँ तो भी उसका अंत नहीं होगा। ये तुम्हारा भाग्य है कि तुमने प्रश्न पूछा। और ये जो दूसरा व्यक्ति था वो सिर्फ नकल कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको पीटा। और सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हरिदास ठाकुर की महिमा को सुनकर। हरिदास ठाकुर जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे और इससे कई ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे, आप जोर जोर से क्यों भगवान का नाम लेते हो, जानते नहीं हो चातुर्मास्य का समय है, भगवान विष्णु सो रहे हैं। आप तो नहीं सो रहे ना। आप लोग जोर से बोलिए हरी हरी। ठीक है, तो आप जानते नहीं हैं कि भगवान विष्णु सो रहे हैं और ये जोर से नाम ले रहे हैं, और इनके जोर से नाम लेने से दुर्भिक्ष हो जाएगा, अनाज उत्पन्न नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब इसको पकड़कर सजा देंगे। और हमने सुना है कि एकादशी के दिन तो रात्रि को जागरण किया जाता है, लेकिन ये हरिदास दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं। वो हरिदास ठाकुर को कहने लगे, हरिदास तुम जोर से क्यों नाम ले रहे हो, क्या भगवान मन में नाम को नहीं सुनते, मन में नाम लो, क्या तुम दिखाना चाहते हो अपने नाम जप को। हरिदास ठाकुर मुस्कुरा कर बोले कि मैं जो भी बोलूंगा भगवान के बारे में मैंने आप जैसे भक्तों से ही सुना है। सत्य यह है, नाम की महिमा सुनिए। उच्च शत गुण सभवेत, एक श्लोक है कि उच्च स्वर में नाम लेने से 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप, जब कोई व्यक्ति मन में नाम लेता है तो अपने आप का उद्धार करता है, लेकिन जब लोग जोर से गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पशु पक्षी कीट जाए श्री वैकुंठ धाम, शुन विप्र सुकृत सुनील कृष्ण नाम। कृष्ण नाम सुनने से पक्षी पशु कीट सब वैकुंठ चले जाते हैं, इसलिए मैं भगवान का नाम जोर से लेता हूँ। ये सुनकर वो ब्राह्मण और गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं हरिदास तुम्हें झूठ बोल रहे हो, तुम शूद्र, शूद्र से भी नीचे यवन परिवार से होकर हमें सिखा रहे हो, हम ब्राह्मण हैं, तुम गलत सिखा रहे हो। शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में ऐसा ही होगा कि शूद्र लोग वेदों का पाठ करेंगे, तुम गलत बोल रहे हो। अगर तुम जो बोल रहे हो गलत सिद्ध हो गया तो मैं तुम्हारा नाक और कान काट दूंगा। हरिदास ठाकुर मुस्कुरा कर बोले, तुम चिंता मत करो, मैं अपना स्वयं नाक खुद काट दूंगा। लेकिन थोड़े समय बाद ये व्यक्ति जो हरिदास की निंदा कर रहे थे उसको बहुत भयंकर बीमारी हो गई, उसका सुंदर नासिका जो ऊंचा था वो गल के जमीन पर गिर पड़ा। और हरिदास ठाकुर ने जब ये सुना तो बहुत दुखी हुए। अब ये भी एक सहनशीलता का उदाहरण है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपका नाक काट दूंगा और उसका नाक कट जाता है तो आप बोलोगे देखो टिट फॉर टैट, है ना। भगवान ने देखो तुमको फल दिया, मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ, बैक टू गॉडहेड में आना चाहिए आर्टिकल। लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं, वो सोच रहे थे नहीं, इसके अपराध को माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन मैं अभी अंतिम लीला पे आऊँगा क्योंकि समय हो रहा है। हरिदास ठाकुर के तिरुभाव की लीला, जो श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय थी और सारे गौड़ीय वैष्णव को प्रिय है, और आप सबको भी बहुत प्रसन्नता होगी ये लीला को सुनकर। हरिदास ठाकुर कुछ समय के लिए बेनापोल में रहते थे, और वहाँ पर एक बार रामचंद्र खान ने एक वेश्या को भेजा उनका पतन कराने के लिए। हरिदास ठाकुर कहने लगे कि मेरा जप बाकी है, आप बैठो, नाम जप सुनो, मेरा जप पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। और वो वेश्या बहुत सुंदर थी, अनेक प्रकार से हरिदास को मोहित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे। एक दिन बीत गया और हरिदास ने कहा कि आज मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा जप पूरा नहीं हुआ था, अब कल फिर से लौट कर आना। और वो वेश्या फिर से आई। इस तरह से तीसरे दिन जब वो वेश्या आई, धीरे धीरे वो भी तुलसी को नमस्कार करने लगी और वो भी गाने लगी, हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो वेश्या भी भक्त हो गई, वो प्रणाम करके बोली, हरिदास मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत इरादे से आई थी। हरिदास बोले, मैं पहले से ही जानता था ये मूर्ख रामचंद्र खान ने तुम्हें भेजा था, मैं तो वहीं उसी समय जाने वाला था, लेकिन तुम्हारा उद्धार के लिए मैं रुका हुआ था, अब तुम यहाँ पे रहो, मैं ये कुटिया छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठकर तुम जप करो। और वो वेश्या ने सब अपने जो पैसे कमाए थे वो ब्राह्मणों वैष्णवों को दे दिए, और वहीं पर बैठकर वो 3 लाख जप करने लगी, वो वैष्णवी बन गई। आसपास के बड़े बड़े संत उसका दर्शन करने आते कि देखो हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है, कि एक वेश्या भी परम संत बन गए। ये साधु संघ की महिमा है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे साधु थे जिनके प्रभाव से हजारों लाखों लोग कृष्ण भक्त बन गए, पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और एक बार हरिदास ठाकुर जब जप कर रहे थे फुलिया में, तो स्वयं माया देवी आई परीक्षा लेने के लिए। अभी इस दुनिया में जो भी परीक्षा आती है, जो भी सुंदरता आती है, वो माया का एक अंग है, लेकिन स्वयं माया देवी कैसे होगी। और उसके आते ही अंधेरी रात्रि में ऐसा लगा कि मानो सूर्य आ रहा है, ज्योत्सना प्रकाश फैला हुआ है। और वो हरिदास ठाकुर को बोलने लगी कि मैं आपका संग करना चाहती। हरिदास ठाकुर का सेम फॉर्मूला था, मेरा जब बाकी है। आपको भी अगर माया परीक्षा ले, चाहे कई बार स्त्री के रूप में या स्त्री के लिए पुरुष के रूप में या रिश्तेदारों के रूप में, कभी माया का मतलब जरूरी नहीं है कि खाली मैथुन इच्छा, जो भी चीज़ हमें कृष्ण भक्ति से दूर ले जाती है वो माया है। अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि हमें ये करना है, टीवी देखना है या कुछ करना है, तो आप यही बोलो मेरा जब बाकी है, ये फॉर्मूला हमेशा वो कार्य करता है। और हरिदास ठाकुर का ऐसा नियम था कि उनका जब कभी ख़त्म होता ही नहीं था। हमें भी ऐसे 16 माला तो करना ही है, और उसके बाद जब भी समय मिले हमेशा गाना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशली एकादशी के दिन अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे और विश्वा और माया देवी से कहा कि आप इंतज़ार करो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, और तीसरे दिन वो माया देवी बोली, आमी माया, मैं माया हूँ, आपकी परीक्षा लेने आई, ब्रह्मा जी शिव जी को मैंने मोहित कर दिया लेकिन आपको मोहित नहीं कर सकी, अब मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। मैंने शिवजी से राम नाम ग्रहण किया है, लेकिन राम नाम जो है सिर्फ मुक्ति दे सकता है, कृष्ण प्रेम नहीं, इसलिए मैं आपसे कृष्ण प्रेम चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने माया को भी कृष्ण नाम दिया, माया भी वैष्णवी परम वैष्णवी होगी। फिर आखिरी लीला है कि हरिदास ठाकुर जब बहुत बूढ़े हो गए होते हैं, एक बार वो जमीन पर लेटे हुए सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी के पास एक स्थान है, महाप्रभु ने जगन्नाथ का जो लकड़ी होता है महाप्रसाद दातुन, उसको जमीन में गाढ़ा और उसमें से एक वृक्ष प्रकट हो गया, हरा भरा वृक्ष। महाप्रभु बोले, हरिदास तुम यहीं पर बैठकर जप करो और यहाँ से भगवान जगन्नाथ के चक्र का दर्शन करो, तुमको वही फल मिलेगा और मैं स्वयं आकर तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आऊँगा। क्योंकि हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार से थे, उनको अंदर प्रवेश नहीं था, तो बाहर से ही वो पेड़ के पास से ही जप करते और स्वयं भगवान जगन्नाथ बाहर आते चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उनको महाप्रसाद देते। तो एक दिन हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, धीरे धीरे जप कर रहे थे। उस समय महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रसाद ले आए, हरिदास ये प्रसाद लो। हरिदास बोले, मेरा जप पूरा नहीं हुआ, मैं प्रसाद कैसे ले सकता। लेकिन आप महाप्रसाद लेकर आए हो, अगर मैं आदर नहीं करूं तो भी अपराध होगा। ऐसा सोच के उन्होंने एक थोड़ा सा प्रसाद लिया और वो फिर से जप करने लगे। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, बोले हरिदास तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? हरिदास बोले मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। महाप्रभु ने पूछा कौन व्याधि है लो, क्या बीमारी हुई? और हरिदास ठाकुर बोले मेरी बीमारी यह है कि मेरा संख्या पूर्वक जप पूरा नहीं हो रहा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को जो उसने नियमित किया है जप, अगर वो पूरा नहीं कर पाता मतलब समझना चाहिए वो आध्यात्मिक रूप से बीमार है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हरिदास अब तुम ये इतना 3 लाख जप करना कम कर दो, तुम वृद्ध हो गए हो, तुम अवतार लिए हो लोगों को हरि नाम सिखाने के लिए, तुमने पूरे दुनिया को सिखाया है, अब तुम कम कर लो। हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया भगवान मेरी एक इच्छा है, मेरा एक निवेदन है, मेरा बहुत नीच जन्म है, मैं अदृश्य हूँ, मेरे को देखने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, मैं अस्पृश्य हूँ, अनटचेबल हूँ, मेरा कलेवर निंदनीय है, मैं इतने अधम परिवार में आया लेकिन आपने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया, रौरव नरक से मुझे वैकुंठ की ओर ले आए, आप स्वतंत्र हो, आप ईश्वर हो, आप जिसको जैसे नचाना चाहे वैसे नचा सकते हो। अद्वैत आचार्य के घर में जब श्राद्ध उत्सव हुआ सबसे पहला भोजन ब्राह्मणों को दिया जाता है, सबसे क्वालिफाइड योग्य ब्राह्मण को, और वो मुझे दिलाया गया। इस तरह आपने मेरा बहुत आदर किया, मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं जानता हूँ कि कुछ ही समय में आपकी लीला अंत होने वाली है, मैं आपके लीला का अंतिम अध्याय नहीं देखना चाहता, मैं उससे पहले अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, मैं अपने आँखों से आपके मुख को देखते हुए, आपके चरण कमल को अपने छाती पर रखते हुए और अपनी जीभ से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इस तरह श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए अपने प्राणों को त्याग करना चाहता हूँ। भगवान अगर आप दयालु हो तो मेरी इच्छा को पूरी करो। इस बात को सुनकर महाप्रभु की आंखों में आंसू आए, बोले हरिदास तुम्हें जे मांगी वह, आप जो भी मांगोगे भगवान दयालु है, कृष्ण है, आप उनके शुद्ध भक्त हो, वो जरूर पूरा करेंगे, लेकिन आप मेरा ख्याल रखो, मेरा धरती पे आना हुआ है तुम जैसे भक्तों के संग के लिए, और तुम अगर चले जाओगे तो मेरे जीवन का क्या होगा। हरिदास ठाकुर भगवान के चरणों को पकड़कर बोले भगवान आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा भ्रम मत करिए, आपके साथ इतने सारे भक्त हैं, वो सब मेरे सिर पर बैठने के लायक है, अगर एक चींटी की मृत्यु हो जाए, एक कीड़े की मृत्यु हो जाए तो दुनिया का क्या नुकसान होता है, मैं एक तुच्छ चींटी के समान हूं, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। हे भगवान आप भक्त वत्सल हो, आप भक्तों की इच्छा पूरी करते हो, मैं भक्ताभास हूं, मैं एक इमिटेशन भक्त हूं, मैं नकली भक्त हूं, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरी इस इच्छा को पूरी करो। उस दिन महाप्रभु को दोपहर के कर्तव्य के लिए जाना था इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चले गए। अगले दिन वो फिर आए और बोले हरिदास क्या समाचार है? हरिदास बोले भगवान जो कृपा आप दिखाओ। महाप्रभु ने भक्तों को आदेश दिया कीर्तन शुरू करने के लिए, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने लगे, सारे भक्त गाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब एकत्रित भक्तों के सामने हरिदास ठाकुर के महिमा का गान करने लगे। वो ऐसे बोलने लगे जैसे उनके पास 5 मुंह हो, और कभी कभी ऐसे बोलने लगे जैसे उनके पास 1000 मुंह हो। महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती हरिदास के बारे में बोलने के लिए। हरिदास ठाकुर ने सब एकत्रित भक्तों के चरणों के धूल को अपने सिर पर लिया, फिर उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल को अपने छाती पर रखा। जैसे एक भृंग, एक कीड़ा कमल के फूल के प्रति केंद्रित होता है, ऐसे हरिदास ठाकुर ने अपनी आंखों को चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल पर केंद्रित किया और अपनी जीवा से वो कहने लगे श्री कृष्ण चैतन्य, 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 श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सब लोगों ने जब देखा ये कैसे हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा से भगवान के प्रकट रहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सबको याद आया भीष्म देव, कैसे भीष्म ने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का अवलोकन करते हुए अपने प्राण त्याग किए थे। सब लोग कहने लगे हरि हरि कृष्ण कृष्ण, इस तरह हरि और कृष्ण का नाम गाते हुए सब लोग कीर्तन करने लगे। हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को स्वयं महाप्रभु अपनी गोद में लेकर नृत्य करने लगे और सब भक्तों के साथ लेकर समुद्र की ओर ले गए। एक्चुअली वो कीर्तन कर रहे थे और स्वरूप दामोदर ने कहा भगवान अब अंतिम संस्कार का समय हो रहा है, तो उनके दिव्य शरीर को कीर्तन करते हुए समुद्र की ओर ले गए। समुद्र के पानी से उनके दिव्य कलेवर को स्नान कराया और महाप्रभु ने घोषणा की कि आज से यह समुद्र महातीर्थ हो गया। हरिदास पादोदक पिए भक्तगण, हरिदास अंगे दिले प्रसाद चंदन। सब लोग उसके चरणामृत को लेने लगे। फिर हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को ले गए समाधिस्थ करने के लिए। स्वयं महाप्रभु अपने हाथ से गड्ढा खोदने लगे और हरिदास ठाकुर के दिव्य शरीर को समाधि में रखा गया। भगवान जगन्नाथ के माला और उनका प्रसाद और चंदन और रथ यात्रा के समय की रस्सी उनके समाधि के साथ रखे गए। स्वयं भक्तगण उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे थे, वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। हरि बोल बोले गौर राय, अपने श्री हस्ते बालू तारा दिए गाय। महाप्रभु अपने हाथ से मिट्टी डाल रहे थे और बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस तरह उनके शरीर को दिव्य समाधिस्थ करने के बाद महाप्रभु ने चारों ओर से एक चबूतरा बनाया फैंसी और फिर कीर्तन करने लगे। महाप्रभु सब भक्तों के साथ परिक्रमा की उसकी समाधि के। फिर सब भक्तगण समुद्र में गए स्नान करने के लिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने आंचल को अपने चादर को आगे फैलाकर जगन्नाथपुरी के मार्केट में दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे और कहने लगे हरिदासे र ठाकुरे महुत्सेवे रतरे प्रसाद मागिया भिक्षा दे हमारे, मेरे को भिक्षा दो, आज मैं भीख मांग रहा हूँ हरिदास ठाकुर के तिरुभाव से, आप भिक्षा दो। और सब दुकानदार भर भर के देने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रोक दिया, बोले भगवान ये आपका कार्य नहीं है, दूसरे भक्त मांग लेंगे। फिर चार भक्तों को नियुक्त किया गया और चार भक्तों को बताया गया कि आप सबसे भिक्षा मांगो और दुकानदारों से कहा गया कि आप एक 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 चीज के सिर्फ चार मुट्ठी दो, क्योंकि इतने सारे दुकानदार देना चाहते थे। सब लोग बहुत सारा प्रसाद दे रहे थे। उधर वाणीनाथ पटना एक और प्रसाद ले आए, उधर काशी मिश्र और प्रसाद ले आए और सारे वैष्णव मिलकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। मैं एंड करना चाहता हूँ प्रसाद से। सब भक्तों को पंक्ति में बिठाया गया और स्वयं महाप्रभु अपने हाथों से हरिदास ठाकुर के तिरुभाव पर प्रसाद बांटने लगे। महाप्रभु श्री हस्ते अल्पन आई से एक एक पाते पंच जनार भक्ष परोसे। महाप्रभु के हाथ छोटे नहीं थे और उनका हृदय भी बहुत बड़ा था, तो एक एक पत्तल पे पांच पांच जनों का प्रसाद बांट रहे थे। आज आप लोग भी ट्राई करना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है वो इतने प्रसन्न हो गए सब देखकर, बोले भगवान अब आप बैठ जाइए, जब तक आप नहीं खाओगे तो कोई नहीं खाएगा। और फिर स्वयं महाप्रभु बैठे, काशी मिश्र भी प्रसाद बांटने लगे और महाप्रभु हर एक को बोले थे इसको ये दो इसको और दो इसको और दो। आकंठ पुराया सबाय कराइला भोजन, देह देह बोली करे इसको दो दो दो। और सब लोगों ने इतना प्रसाद लिया, इसे हम लोग बोलते हैं ना आधा पेट खाना चाहिए या संडे को फुल पेट खाना चाहिए, लेकिन हरिदास ठाकुर के दिन गले तक चेतना प्रभु सबको गले तक भोजन कराते हैं और साथ साथ सब लोग बोलते हैं हरी 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 हरी। चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को वरदान देते हैं कि आज जिस भक्त ने हरिदास ठाकुर के लीला का दर्शन किया, आज किसी ने अगर नृत्य किया या किसी ने यहाँ पर कीर्तन किया या किसी ने सिर्फ मिट्टी डाली या किसी ने प्रसाद ग्रहण किया, निश्चित ही उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी। और ये कथा सुनने से वही फल मिलता है जो देखने से मिलता है, अगर अगर जागते हुए सुना होगा तो। और अंत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उनके आंखों में आंसू आने लगते हैं, उनको खुशी भी होती है दुख भी होता है। उनको खुशी होती है कि हरिदास ठाकुर वापस भगवान के धाम चले गए, लेकिन दुख होता है, दुख क्या होता है कि हरिदास ठाकुर का संग नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिला संग, स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा कैला संग भंग। ये कृष्ण जो है स्वतंत्र हैं, उन्होंने दयापूर्वक मेरे को हरिदास ठाकुर का संग दिया और अपनी इच्छा से अब संग को भंग कर दिया है। आज मुझे उनके तिरुभाव से भीष्म के तिरुभाव का स्मरण हो आया। हरिदास ठाकुर इस धरती पे सब भक्तों में शिरोमणि थे, आज उनके बिना ये मेदिनी, ये धरती जो है बिल्कुल रत्न शून्य हो गई है। फिर सब भक्तों से कहने लगे कि सब लोग बोलो जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। जोर जोर से हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए महाप्रभु बोले नामेर महिमा जे कोरिलो प्रकाश। उन हरिदास ठाकुर की जय हो जो नाम की महिमा का गान करते हैं। और कविराज गोस्वामी बोलते हैं, फिर महाप्रभु ने सब भक्तों को विदा किया और स्वयं खुशी के साथ और दुख के साथ विश्राम करने गए। कविराज गोस्वामी जिन्होंने दिव्य ग्रंथ लिखा है वो कहते हैं, ए तो कहिलो हरिदासेर विजय, जहार श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। मैंने लीला सुनाई है हरिदास ठाकुर की और इस लीला को सुनने से कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति होती है। और लीला को सुनने से दृढ़ भक्ति होती है, हम सुन लेते हैं फिर भी भक्ति क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब बार बार सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कभी ध्रुव महाराज की कहानी सुनते तो 100 बार सुनते, कभी प्रहलाद महाराज की कहानी सुनते 100 बार सुनते, वही नहीं बोलते अरे अभी पिछले रविवार को सुना था कुछ नया सुनाओ, वही कहानी को बार 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 सुने। कृष्ण लीला, गौर लीला, राम लीला, इसको बार बार सुनना चाहिए और साथ में हमेशा गाना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये लीला बताती है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर की इच्छा थी कि उनके पहले शरीर छोड़ने की, उन्होंने स्वीकार किया, स्वयं अपने हाथों से उनके शरीर को लेकर नृत्य किया, स्वयं उनको स्नान कराया, स्वयं उनको समाधिस्थ दिया। और इस तरह से महाभागवत हरिदास ठाकुर जो परम विद्वान थे उनका तिरोभाव हुआ। चैतन्य चरित्र जो है ये अमृत के सिंधु के समान है और उसकी एक बूंद भी कान को और मन को तृप्ति प्रदान करने वाली। और अंत में वो वरदान देते हैं, भव सिंधु तरी बारे आचे जार चित्त, जिसकी इच्छा है कि भव सिंधु को तरी बारे पार करने की, सो क्या करना चाहिए, श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित्र, श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला का गान करना चाहिए। अंत में हरिदास ठाकुर को यहाँ पर विद्वान बोला गया। हरिदास ठाकुर विद्वान क्यों बताए गए हैं, जिन लोग सोचते हैं कि विद्वान मतलब BA MA BTech MTech और बड़े बड़े डिग्रीज, कोई अक्षर आगे होने चाहिए उसका मतलब नहीं मालूम हो, लेकिन विद्वान का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति को कृष्ण नाम में श्रद्धा है वो विद्वान है। सबसे बड़े ज्ञान है कृष्ण नाम का ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान। तो आप सब भी ये परम विद्वान बनिए हरिदास ठाकुर की तरह, हरि नाम स्वयं ग्रहण करिए और दूसरों को हरि नाम दीजिए। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि हम आपने हमारे लिए इतना किया है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अपना ऋण कैसे चुका सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोले जो चीज़ मैंने आपको दी है वो आप दूसरों को दीजिए। प्रभुपाद ने हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हरि नाम दिया। तो हमारा भी कर्तव्य है, स्पेशली भारतवासी, मेरे ख्याल से यहाँ पर अधिकांश सब भारतवासी हैं, भारत में जन्म, भारत भूमि ते हईलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पुरोपकार। उसका भारत में जन्म हुआ है, उसका कर्तव्य है कि परोपकार करें, पहले खुद स्वीकार करें हरि नाम को और फिर दूसरों को दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया आज हरिदास ठाकुर की खुशी के लिए थोड़ा और जोर से एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, जय हरिदास। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्णा।